चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी आपके अपने प्रोग्राम जब चले शहर की ओर में आपका स्वागत करता हूं। और अरे, ये अंजलि कहाँ रह गई? ओह सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई और अभी से ट्विस्ट। वो दरअसल बात क्या है, ये अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इत्तेफाक से वो भी इस प्रोग्राम की प्रेजेंटर है। और हाँ, उसके बारे में एक जरूरी बात, वो थोड़ी सी खिसकी हुई है लेकिन दिल की अच्छी है।
थैंक गॉड, बच गई।
क्या हुआ अंजलि, और तुम इतना हाँफ क्यों रही हो?
अरे यार, पूछो मत, बस ये समझ लो कि जान बचा कर आ रही हूँ।
अरे मुझे भी तो पता चला कि आज मुसीबत का सामना किस मुसीबत से पड़ गया।
नरेन, तुम हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो।
ओके बाबा, लेकिन अब बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या? और अब तो मेरे साथ हमारे सारे लिसनर्स भी जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर अंजलि को किस मुसीबत ने घेर लिया। चलो मेरी न सही, पर उनकी बेचैनी तो मत बढ़ाओ।
क्या, प्रोग्राम शुरू हो गया?
जी हाँ, प्रोग्राम शुरू भी हो गया और मैंने तुम्हारी तारीफ भी लोगों से कर दी है।
नरेन, अब तुम कुछ देर बिल्कुल चुप रहना, मुझे लिसनर से कुछ कहना है।
अच्छा बाबा, तुम ही बोलो।
तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि जोशी।
वो मैं बता चुका हूँ।
हे भगवान, इस नरेन ने मेरे बारे में पता नहीं दोस्तों आपको क्या बताया होगा।
तो अंजलि, अब तो बता दो, तुम्हारे आज देर से आने की वजह क्या है और तुम इतना हाँफ क्यों रही थी?
ओ हाँ, अरे यार नरेन, क्या बताऊँ, आज मेरे घर पर लड़के वाले मुझे देखने आ रहे थे।
रियली?
फिर क्या, मुझे यहाँ आना था और वैसे भी मुझे अभी शादी करनी भी नहीं है।
तो अब घर पर क्या होगा?
क्या होगा?
मेरा मतलब है कि घर पर वो लोग आएंगे।
दरअसल मैंने अपने भाई से कह दिया है कि जब वो लोग आए तुम रेडियो चला देना और कह देना लड़की देखने के लिए तो नहीं मिलेगी, पर हाँ सुनकर ही पसंद कर लो। और वैसे भी अब तक तो उनको भी मेरा मैसेज मिल गया होगा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है।
वो कैसे?
रेडियो पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स भी हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं।
अंजलि तुम भी। तो दोस्तों, अंजलि अपनी शादी से तो बचकर यहाँ आ गई है, पर देखते हैं कि क्या चंदर और मधु अपनी शादी से बच पाते हैं या नहीं, हमारे धारावाहिक शहर की ओर में।
अरे भाई, अरसे की थाली किधर है?
वो रही अरसे की थाली, बौजी ला रही है।
माँ जी, ये रही अरसे की थाली।
ला बारी, इधर ला, और तू जा बाकी का काम दे, बहुत काम पड़ा है अभी।
जी माँ जी।
और हाँ सुन, आज प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बना लेना, शाम तक और भी नूतर आने वाले हैं।
अच्छा माँ जी।
अरे फूल मती, बुआरी से इतना काम मत करवा, पेट से है।
अरे तो क्या हुआ, हमने भी तो अपने समय में आखिरी महीने तक घर और खेत दोनों को संभाला है। हाँ। और चंदर भी पता नहीं कहाँ गया, शादी का घर है, 100 काम है, पता नहीं बिना बताए कहाँ निकल जाता है।
ओ दादी, चाचू तो शादी की कार देने गए हैं।
ओहो, भगवान ही जाने कब इनके काम खत्म होंगे, पिछले 4 दिन से इनके न्योते ही बट रहे हैं। और तू क्या कर रही है?
दादी पढ़ाई कर रही हूँ।
अरे ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाली, चल छोड़ इसे, अब मेरे साथ काम में हाथ बटा।
दादी मुझे पढ़ना है।
घर का कुछ काम करेगी तो आगे भी काम आएगा, चल मेरे साथ।
दादी।
ए चुप्पी। हाँ बौजी। यहाँ क्या है बौजी? सुन, तूने अपने भैजी को देखा है?
वो बताया ना अभी नकुल ने, भैजी तो शादी का न्योता देने गए हैं।
अरे मैं चंदर की नहीं, तेरे बड़े भैजी की बात कर रही हूँ। आज वो पैसे लाने वाले थे ना शादी के सामान के लिए।
बौजी वो
क्या कर रही है, साफ साफ बोल।
बौजी भैजी ना वो।
बस चुप हो जा, समझ गई मैं, पड़े होंगे पीकर ऊपर और सारे पैसे भी पीने में उड़ा दिए होंगे। अच्छा तू जा, मैं देखती हूँ।
उमेश, उमेश
कौन है भाई? अरे आ रहे हैं आ रहे हैं, अब क्या दरवाजा तोड़ोगे? अरे चंदर तू कैसा है मेरे दोस्त, और सुना क्या हाल है तेरे?
शुक्र है, कोई तो घर पर मिला।
क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है?
अरे यार क्या बताऊं, वैसे वो जो दर्शन है ना अपना,
कौन वो, ठीक ना?
हाँ यार वही, उसके घर गया था शादी का कार्ड देने, पता चला वो तो बम्बई में है, वहीं किसी होटल में नौकरी कर रहा है। और वो शाम है ना,
हाँ हाँ,
उसको भी दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, वो भी आज सुबह ही दिल्ली को निकल गया।
अच्छा
जिसे देखो वही शहर जा रहा है। मुझे तो लगा तू भी कहीं बाहर ही होगा।
हाँ, मैं भी कल देहरादून से आया हूँ यार।
अच्छा,
कई दिन से गाँव का चक्कर ही नहीं लगा था। और सच कहूँ तो मुझे भी गाँव की बहुत याद आ रही थी। इस बार छुट्टियाँ मिली, बस आ गया गाँव। आ बैठ।
हाँ,
और सुना, घर पर सब कैसे हैं?
घर पर सब ठीक है। तू अपनी सुना, कैसा चल रहा है तेरा देहरादून में? तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये जीन्स की पैंट, ये कीमती शर्ट, सच कहूँ तो शहर की हवा खूब रास आ रही है तुझको।
अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं, तुझे तो पता ही है ज़माना कितनी तेज़ी से बदल रहा है।
हाँ यार, सभी लोग शहर जाकर बस रहे हैं, वहीं अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। अब तेरा भी काम धंधा बढ़िया चल रहा है ना वहाँ पर?
हाँ यार, काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा काम मिल गया है, कमाई अच्छी है, बस और क्या चाहिए। ये कह ले कि दिन आराम से गुजर रहे हैं। अरे यार, बात बात में मैं तो पूछना ही भूल गया, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ?
यार दरअसल बात यह है कि 4 दिन बाद मेरी शादी है और उसी का न्योता देने आया था। हम ये रहा कार्ड।
अरे वाह, तेरी शादी है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर तेरी शक्ल देख के तो लग रहा है कि शादी ना हुई कोई मुसीबत तेरे गले पड़ने वाली हो। अरे यार, ये मुसीबत एक दिन हर किसी को गले लगानी पड़ती है।
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है।
तो फिर क्या बात है, तू मुझे बता यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ।
यार अब तुझसे क्या छुपाना, घर में कमाने वालों के नाम पर बस भैजी ही हैं, वो भी अपनी कमाई पीने में उड़ा देते हैं। भौजी पेट से हैं, खेतों पर काम नहीं कर सकती, जिससे परिवार को थोड़ा बहुत सहारा लग सकता। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, रही छुटकी तो सयानी लड़की को खेतों पर काम के लिए भेजना सही नहीं लगता। इधर मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं है, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ जिससे घर का खर्च चल सके। बस यूँ समझ ले यार, माँ ने जोर दिया है इसीलिए हालात से समझौता कर रहा हूँ। कम से कम कोई तो आ जाएगी जो खेतों पर काम कर सके, और फिर मैं भी गांव के बाकी लड़कों की तरह शहर जाकर कुछ काम धंधा ढूंढ लूंगा।
ओहो, तो तेरी समस्या शादी नहीं नौकरी है, और तू शादी इसलिए करना चाहता है ताकि तेरी बुआरी खेतों पर काम करके घर का खर्च चला सके, घर की देखभाल कर सके।
यार चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, अब कुछ तो करना ही होगा ना।
अच्छा तू एक काम कर, पहले तो ये शादी के काम से निपट ले, उसके बाद कुछ पैसों का इंतजाम कर ले।
पैसों का? पर वो क्यों?
अरे भाई, जब शहर जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुझे जाते ही नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने में कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी। अब इतना इंतजाम तो तुझे करना होगा ना, जैसे कुछ दिन वहाँ आराम से गुजार सके। बाकी रही नौकरी की बात, तो उसका कोई ना कोई इंतजाम तो मैं तेरे लिए कर दूंगा।
सच उमेश, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अरे एहसान कैसा पागल, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं।
अच्छा उमेश, अब मैं चलता हूँ, अभी और भी कार्ड बांटने हैं। और हाँ, शादी में जरूर आना।
हाँ हाँ भैया, जरूर आएंगे।
कम से कम कुछ दिन के लिए तो ये पीना छोड़ दो, आपके भाई की शादी है, घर में खुशी का माहौल है।
शादी है? अरे हाँ शादी है, मेरे भाई की शादी है। अब तो मैं 2 पैक और ज्यादा पीऊंगा भाई, आखिर खुशी का मौका है, मेरे भाई की शादी है।
भगवान के लिए बस करो।
क्यों बस करूं? मैं तो कहता हूँ तुम भी पियो, खुशी का मौका है, मेरे भाई की शादी है, और वो तुम्हारा देवर भी तो है, लो तुम भी पियो।
पागल हो गए हो क्या, भगवान के लिए बस करो।
बस करूं? क्यों बस करूं भाई, तुम्हारे पैसों की पीता हूँ, तुम्हारे बाप के पैसों की पीता हूँ, तुम होती कौन है मुझे टोकने वाली?
मैं पत्नी हूँ तुम्हारी।
तो क्या करूँ फिर, तुम्हारी पूजा करूँ, तुम्हारे पैर पड़ूँ? लाओ जय हो पत्नी जी की।
इस पीने के चक्कर में सारे घर का माहौल खराब हो रहा है, 2 दिन यहाँ खुशी के नहीं मिल सकते।
मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? मैं तेरी तो
भगवान ऐसे जीने से तो उठा ही ले।
अभी क्या जरूरत थी शादी की, मैंने तो इसके बारे में अभी सोचना भी शुरू नहीं किया था, कॉलेज पढ़ लेती तो क्या बिगड़ जाता।
अरे मधु, ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है?
पुष्पा,
तू कब आई ससुराल से?
तब जब मेरी ये प्यारी सी सहेली अपने ख्यालों में खोई हुई अपने आप से बात कर रही थी। चल अब जल्दी बता, किसके बारे में सोच रही थी? हमारे होने वाली जीजा जी के बारे में। बोल, है ना, बोल।
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है।
तू इतनी निराश क्यों है? कोई खास बात है क्या?
कोई खास बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके पिताजी ने इसकी शादी तय कर दी है और ये जिद पकड़ी बैठी है कि इसे आगे पढ़ना है। अब तू ही बता पुष्पा, क्या यहाँ पर कोई और भी है इसके जैसी? अरे और किसी को नहीं तो अपनी इस पुष्पा को ही देख लेना। समय रहते इसके माँ बाप ने इसकी शादी कर दी और आज अपनी ससुराल में कितनी खुश है। वो तो मेरी ही जिद थी कि ये कम से कम 12वीं तक जरूर पढ़ेगी, वरना इसके पिताजी कहाँ इसे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजते। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए लड़की शहर जाए, इसके लिए तो मैं भी इसके पिताजी को नहीं मना सकती हूँ। और फिर अब आगे पढ़ना ही है तो अपने घर जाकर पढ़े। आखिर कुछ इनके ब्याह सगाई पर भी खर्च करना है कि नहीं, या फिर सारी कमाई तेरी पढ़ाई पर लुटा दें?
क्या माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप लोगों को बस मेरी शादी की पड़ी है। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मैं पढ़ना चाहती हूँ।
पुष्पा अब तू ही समझा दे इसे। जो भी हो, 4 दिन रह गए हैं शादी के। मैं तो कहती हूँ अपनी इज्जत छोड़ और घर गृहस्थी के बारे में सोचना शुरू कर दे। पता नहीं ये लड़कियां भी 2-4 क्लास पढ़ते ही खुद को क्या समझने लगती है।
पुष्पा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तुझे तो पता है ना मेरा पढ़ाई में कितना मन है, लेकिन शादी के बाद तो मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती।
देख मधु, हर माँ बाप को लगता है कि उनकी बेटी उनकी जिम्मेदारी है, जिसे वो उसकी शादी करके जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहते हैं। और तू तो फिर भी खुशकिस्मत है, तेरे माँ बाप ने तुझे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव तक तो भेज दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ाने के बारे में सोचा तक नहीं।
तो क्या पुष्पा, सचमुच कुछ नहीं हो सकता?
काश कुछ हो सकता।
अच्छा पुष्पा, अगर मैं शादी कर लूं और अपने पति से शादी की रात को ही उसे आगे की पढ़ने की बात कर डालूं तो?
तुझे क्या लगता है कि वो मान जाएगा?
क्या पता मान जाए।
देख ले, शादी तो करनी ही है, और अगर तेरा पति तेरी पढ़ाई के लिए मान जाता है तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है।
तो दोस्तों, ये तो तैयारियां चल रही थी मधु और चंदर की शादी की। दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी शादी कर रहे हैं। कमाल है, हर जगह शादी का ही माहौल बना हुआ है। मैं तो कहती हूँ नरेन, ऐसे में तुम भी शादी कर ही डालो।
वाह, खुद तो शादी से बचकर आ रही है और मुझे सलाह दे रही है कि मैं शादी कर लूं।
वैसे नरेन, शादी से मुझे एक जोक याद आया।
ओ प्लीज अंजलि, अब तुम अपने घिसे पिटे जोक्स लेकर मत शुरू हो जाना।
नरेन खबरदार, अगर तुमने मेरे जोक को घिसा पिटा कहा तो। तो दोस्तों, एक बार एक ऐसा लड़का होता है जो शादी करना ही नहीं चाहता, और एक लड़की भी ऐसी होती है जो कभी शादी नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उन दोनों की ही आपस में शादी हो गई है। लोग बड़ी हैरानी करते हैं और पूछते हैं कि ये दोनों तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, फिर इनकी शादी कैसे हो गई? जवाब मिलता है, दोनों के विचार इतने ज्यादा मिले इसलिए दोनों ने आपस में ही शादी कर ली।
ओफो, अंजलि और अंजलि के जोक्स। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि अंजलि के इस जोक ने आपको जरूर बोर किया होगा, लेकिन हमारे ये इंटरव्यूज आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज हैं हमारे ही जैसे उन लोगों के जो गांव से दूर हैं, अपने घरों से दूर हैं और शहरों में नौकरी कर रहे हैं, और गांव के उन लोगों के जिनके परिवार के सदस्य शहरों में काम करते हैं।
आपके गांव से लगभग कितने लोग हैं जो कि गांव छोड़ के शहर की ओर बस गए? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, और बच्चों में टैलेंट होने के बावजूद भी उनका टैलेंट उभर नहीं पाता, इसलिए बाहर जाके लोग अपने बच्चों का टैलेंट उभार सकते हैं और उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकते हैं।
हमारे गांव से लगभग 60% लोग गांव से बाहर शहर की तरफ रहते हैं। दूसरा ये कि गांव में कोई आने के ज़्यादा साधन नहीं है। तीसरा ये है कि खेती बाड़ी में बरसात की खेती है, बरसात कम हो रही है, इसलिए लोग गांव से शहर की तरफ ज़्यादा पलायन करते हैं।
हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 500 के लगभग है, उनमें से 250-300 के करीबन शहर की तरफ आ चुके हैं और बुजुर्ग लोग गांव में ही हैं। जो आजकल की नई पीढ़ी है वो अनेक सुविधाओं के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं। मतलब आजकल गांव में ऐसा किसी चीज की सुविधा नहीं है गांव में, इस वजह से लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं।
हमारे गांव की जो जनसंख्या है वो करीबन 500-600 के करीबन है और इसमें से कम 250-300 लोग तो बाहर ही है। जो मेन कारण है वो रोजगार के यहाँ पे कम संसाधन होने, जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन करते हैं और बाहर की तरफ फैक्ट्रियों में, होटलों में या फिर रोजगार के लिए बाहर जाते हैं।
तो सुना अंजलि, तुमने कैसा लगता है शहर में आने के बाद हमारे दोस्तों को और गांव में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को? बहुत मिस करते होंगे ना सब एक दूसरे को। कभी कभी मुझे भी अपनी दादी की बहुत याद आती है। वैसे अंजलि, तुम्हारी फैमिली में से कोई गांव में रहता है क्या?
नहीं नरेन, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि बहुत सालों पहले मेरे दादाजी जरूर गाँव से शहर आए थे, बस फिर वो यहीं के होकर रह गए। हमने तो गाँव कभी देखा ही नहीं, कभी मौका भी नहीं मिला। अच्छा नरेन, मुझे ना गाना सुनना है।
अंजलि गाना? अंजलि हमारा प्रोग्राम चल रहा है और तुम्हें गाना सुनना है?
क्यों, क्या कार्यक्रम के बीच में गाना सुनना गलत है?
नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है।
और वैसे भी गाना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे लिसनर्स को भी सुनना है।
ओ, तुम उस गाने की बात कर रही हो?
जी हाँ, मैं उस गाने की बात कर रही हूँ।
उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जय कारे, आहा जप तू की तपो भूमि मेरे को गढ़िया वाला, आहा जप तू की तपो भूमि मेरे को गढ़िया वाला। प्यारो ने नीताले चमोली उतर काशी पौड़ी गढ़ी वाल, अल्मोड़ा पिथौड़ा गढ़ी यो प्यारो ने नीताले चमोली उतर काशी पौड़ी गढ़ी वाल, टिहरे औरे देहरादूने या छो हर जुको हर द्वारा रे, आय हर जुको हर द्वारा रे तेरी के जयकारे, जप तू की तपो भूमि मेरे को गढ़िया वाला, ए जप तू की तपो भूमि मेरे को गढ़िया वाला। बेलजू मालुसाई हरुहिता माधो सिंह भंडारी श्री देव सुमन शहीद, यो भूमिका बेलजू मालुसाई हरुहिता यो माधो सिंह भंडारी श्री देव सुमन शहीद, वीर चंद्र सिंह ले खाना आहे आजादी का द्वारा,
तो अंजलि अब तो खुश हो, अब तो गाना भी सुन लिया?
हाँ, सुन भी लिया और पूरा आनंद भी उठाया।
और उम्मीद है हमारे लिसनर्स ने भी पूरा आनंद उठाया होगा।
बिल्कुल।
और अब बारी आती है हमारे अगले सेगमेंट कुछ विश्वास की। अच्छा अंजलि, तुम्हें मालूम है हमारे इस कार्यक्रम के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टर्स भी रखे गए हैं जो गांवों में बसे हमारे दोस्तों और गांवों से शहरों में आए हमारे दोस्तों के जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिर किस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं हमारे ये दोस्त।
तो नरेन, मुझे भी मिलवाओ ना उन रिपोर्टर्स से।
तो चलो मिलते हैं।
मैं रजनी पंत, मुंबई में रहकर भी पहाड़ से कभी नाता नहीं टूटा, पहाड़ की याद लगातार सताती रही। अब मुझे मौका मिला रेडियो रिपोर्टर के रूप में पहाड़ से जुड़ने का। मुझे खुशी है कि मैं पहाड़ और प्रवासियों के बीच संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही हूँ।
मैं हूँ खूबसूरत वादियों वाले दर्शनीय प्रदेश उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का दर्शन सिंह नेगी। मैं इस समय BA का छात्र हूँ और साथ ही सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज़ कम्युनिटी रिपोर्टर के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
नमस्कार, मैं देवी भारती, ग्राम भणज, पोस्ट ऑफिस मस्करनी, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड से सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज़ में काम करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पहाड़ में लोग सामुदायिक रेडियो के माध्यम से काफ़ी जागरूक हैं।
नमस्कार, मैं हरेंद्र कोठियाल, सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज़ केंद्र भणज, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड से। आज हम अपनी आवाज़ को सूचनाओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं केशर सिंह बिष्ट, जन्म क्षेत्र ग्राम के पास पट्टी बासर, जिला टिहरी गढ़वाल, पेशे से पत्रकार और लंबे समय से प्रवासी उत्तराखंडी की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर में गैरों के बीच अपनों को तलाशता रहा, इस तलाश में कई अपनों से मिला, अच्छा लगा। इस मेल मुलाकात ने एक बड़े शहर में नए पहाड़ को जन्म दिया और मैं उस पहाड़ के प्रतिनिधि के नाते आपसे जुड़ने आया हूँ।
नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी परसवान है, मैं सामुदायिक रेडियो रिपोर्टर का काम करती हूँ। हमारे गांव में रेडियो कोई नहीं सुनता है, इसीलिए मैं रेडियो से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं उनको रेडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ।
नमस्ते, मेरा नाम ललित सिंह है, मैं उत्तराखंड पौड़ी जिले का रहने वाला हूँ। जब मैंने पहली बार उत्तराखंड पर होने वाले पलायन के बारे में सुना तो अचानक मेरे मन में एक सवाल आया, क्यों ना अपने गांव के उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं जो रोज़ दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में घर से बगैर सोचे समझे निकलते हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिनके लिए मैं रेडियो के माध्यम से कुछ प्रयास कर सकूं।
नमस्ते, मेरा नाम प्रीति देवलाल है, मैं सामुदायिक रेडियो हेमलवाड़ी में कार्य कर रही हूँ। रेडियो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है।
मैं हूँ शैला तिवारी, रेडियो रिपोर्टर के रूप में मेरे सपनों को नए पंख मिले हैं और अब मैं इन पंखों पर सवार होकर पहाड़ों से मुंबई और मुंबई से पहाड़ों की ओर यात्रा करूंगी और नित नए नए संदेश आपके लिए लाऊंगी।
अच्छा अंजलि, तुमसे एक बात पूछूं?
हाँ पूछो।
अंजलि मान लो अगर तुम गांव में होती।
मैं गांव में? वो क्यों?
अरे यार मान तो लो, तुम्हें सचमुच गाँव नहीं भेज रहा हूँ मैडम।
ओके मान लिया, अब?
और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर शहर आ जाता तो तुम क्या करती?
मेरा पति मुझे छोड़कर शहर आ जाता? यार नरेन, मैं ऐसे आदमी से शादी ही नहीं करती जो मुझे छोड़कर जाए। या तो वो मुझे भी अपने साथ शहर लेकर जाए या फिर खुद भी मेरे साथ गांव में रहे।
अरे मान लो वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए?
नरेन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस बात का जवाब भैजी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
भैजी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जब चले शहर की ओर में।
नमस्कार अंजलि जी, नमस्कार। और नरेन आप कैसे हैं? भैजी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अंजलि, अब भैजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब तो तुम उनसे पूछ सकती हो कि ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए जब पति अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर शहर जाने की बात करे।
हाँ भैजी बिल्कुल, अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में एक महिला को क्या करना चाहिए।
अंजलि सवाल तो तुमने बड़ा गंभीर पूछा है, चलो कोई बात नहीं, हर सवाल का जवाब है इस पोटली में, देखते हैं इस उलझन का क्या उपाय है इसमें। ये पकड़ में आ गया। श्रीमती नेगी जी,
श्रीमती नेगी का मानना है कि अगर पति आपको छोड़कर शहर जाने की बात करे तो आप भी उसे छोड़कर मायके जाने की धमकी दे डालो। क्यों अंजलि, कैसा लगा?
नहीं
समझ में आया, मुझको मालूम है। तो अब मैं अपना ही उपाय बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। भाई देखो, पत्नी और पति एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अब अगर गाड़ी का एक पहिया शहर में हो और दूसरा पहिया गांव में हो तो जरा सोच कर देखिए, गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए
जी।
हाँ, तो बस पत्नी को अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत से विकल्प हो सकते हैं। पत्नी कुछ समय गांव में रहना चाहे या फिर पति उसे साथ ले जाना चाहे। फैसला जो भी हो अंजलि, दोनों के द्वारा मिलजुल कर रजामंदी से लिया गया फैसला हो, तभी जाकर निकलेगा इस समस्या का स्थायी हल।
आपने बिल्कुल सही कहा भैजी, हल तो आखिर बात करने से ही निकलेगा ना। देखा नरेन, मैं ना कहती थी कि इस सवाल का जवाब भैजी के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता।
भैजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। मुझे उम्मीद है कि हमारे कुछ लिसनर्स की उलझन तो जरूर दूर हुई होगी, और आपने हमारी अंजलि की भी उलझन दूर कर दी है जो कि इस सवाल को लेकर काफी देर से दुविधा में थी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा नरेन, अब काम की बात करते हैं।
अंजलि, हम इतनी देर से काम की ही तो बात कर रहे हैं।
नरेन, मैं इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट काम की बात कर रही हूँ।
अच्छा, काम की बात। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हाल ही में 1 अप्रैल से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सारे देश में लागू कर दी गई है, और इस योजना के तहत हर गरीब परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 60 रुपए या फिर उस राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर की राशि भी दी जाएगी।
और उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी 73 रुपए है।
अरे वाह, लेकिन नरेन, इसके लिए लोगों को करना क्या होगा?
इसके लिए गांव के गरीब परिवार के सदस्यों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। गांव के गरीब लोग अपना फोटो और पता ग्राम पंचायत में जमा करवाएं। बस थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद ग्राम पंचायत उन लोगों के लिए जॉब कार्ड जारी कर देगी,
और उस जॉब कार्ड के आधार पर लोग अपनी ग्राम पंचायत को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लिख सकते हैं। और हाँ, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रोजगार आपको सरकार आपकी एप्लीकेशन जमा करवाने के 15 दिनों के अंदर अंदर उपलब्ध कराएगी।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो?
तो राज्य सरकार आपको 15 दिनों की न्यूनतम मजदूरी देती है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत के पास भी जा सकते हैं।
तो अंजलि, काम की बात भी हो गई और हमारे कार्यक्रम का पहला एपिसोड भी अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है।
बिल्कुल नरेन, साथ ही अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? और अगर आप में से भी कोई गांव से शहर आया है और अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटना चाहता है तो हमें जरूर लिख भेजिएगा, क्योंकि उन पत्रों को अगले हफ्ते से हमारे कार्यक्रम में आपकी चिट्ठी सेगमेंट में शामिल किया जाएगा, और पत्र भेजने वालों को दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम।
या फिर अपना कोई संदेश आप हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने घरों तक पहुँचाना चाहते हैं तो भी हमें जरूर लिख भेजिए। हम आपके संदेश को रिकॉर्ड करके अपने सेगमेंट संदेश में शामिल करेंगे और आपका संदेश हमारे कार्यक्रम के जरिए आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा।
हमारा पता है,
जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
आप चाहें तो अपने संदेश और सुझाव हमें SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा फोन नंबर है 9717678223, यानी 9717678223। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसके लिए हम अपने सहयोगियों मंदाकिनी की आवाज, हेवलवाणी और दिल्ली और मुंबई के हमारे सामुदायिक संवाददाताओं के भी आभारी हैं।
तो दोस्तों, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मुझे और अंजलि को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।